आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में हर चैलेंज से निमटने की सलाहियत मौजूद है और वंदे मातरम का जज्बा उसकी ताकत की अलामत है। लोकसभा में आज इंतखाबात से मुतालिक इस्लाहात पर, जबकि राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस होगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू साल 2023-24 के लिए सरकर्दा दस्तकारों को एजाज बख्शने के लिए आज नई दिल्ली में दस्तकारी अवार्ड्स अता करेंगी। भारत ने शेरों के तहफ्फुज़ के लिए मुतालिका ममालिक के साथ ठोस कोशिशें करने की खातिर शेरों से मुतालिक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद में शामिल होने पर जोर दिया है। जापान के शुमाल मशरकी साहिल पर 7.5 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम कटक में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखता है क्योंकि वंदे मातरम की रूह उसे तकवियत देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वंदे मातरम महज एक गीत या नज्म नहीं है, बल्कि लोगों को उनके फ़राइज के तई जगाने की तरगीब का जरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि वंदे मातरम मुल्क के लिए तहरीक का वसीला है क्योंकि अवाम आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में लगे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के ज़िमन में कल लोकसभा में बहस के दौरान ये बात कही। कौमी गीत वंदे मातरम को साल 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था।
भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भाव गीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें झकझोरने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहा है। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है।
बहस की शुरुआत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने पूरे मुल्क को तवानाई और तहरीक दी, जिससे जद्दोजहद आज़ादी को तकवियत हासिल हुई। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि मुस्लिम लीग ने साल 1937 में वंदे मातरम की मुखालिफत की सियासत का रास्ता अपनाया। जनाब मोदी ने वंदे मातरम से समझौता करने पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कौमी गीत के मामले पर मुस्लिम लीग के आगे झुक गई। वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद अली जिना ने वंदे मातरम के खिलाफ नारे लगाए और उस वक्त के कांग्रेस सदर जवाहरलाल नेहरू ने जिना की मजम्मत करने के बजाय वंदे मातरम पर तहकीक शुरू कर दी। जिना की जानिब से वंदे मातरम की मुखालिफत करने के महज 5 दिन बाद जनाब नेहरू ने यह तहकीक शुरू कर दी।
मोहम्मद अली जिना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी।
बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम मुल्क के माजी, हाल और मुस्तकबिल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कौमी गीत ने मुजाहिदीन आजादी को बरतानवी राज के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वंदे मातरम मुल्क की रूह है और हर भारतीय इसे गाते हुए फख्र महसूस करता है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने साल 1896 के कांग्रेस इजलास में इसे पढ़ा। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि वंदे मातरम पर कराई जा रही बहस का मकसद बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मौजूदात से तवज्जो हटाना है। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम ने लोगों को मुत्तहिद किया। उन्होंने दावा किया कि वंदे मातरम का मकसद फिरका वाराना सियासत को मुस्तरद करना था। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर, समाजवादी पार्टी की इकरा चौधरी, जेडीयू के लवली आनंद, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट संबित पात्रा और टीएमसी के कल्याण बैनर्जी ने भी बहस में हिस्सा लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मजमुई तौर पर 66 अराकीन ने वंदे मातरम पर हुए मुबाहसे में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क ने यह देखा कि किस तरह सभी ने ऐवान में वंदे मातरम पर आधी रात तक बहस की। जनाब बिरला ने उम्मीद जाहिर की کہ اس طرح کے تعمیری مباحثے ایوان میں منعقد ہوتے رہیں گے، جس کے بعد ایوان کی کارروائی ملتوی کی گئی۔ آج لوک سبھا میں انتخابات سے متعلق اصلاحات کے معاملے پر بحث ہوگی۔ اس دوران راجیہ سبھا میں قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ پر بحث ہوگی۔ اس کے علاوہ آج نئی دلی میں پارلیمنٹ لائبریری عمارت کے جی ایم سی بالا یوگی آڈیٹوریم میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی میٹنگ ہوگی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں این ڈی اے کے سبھی ممبران سے اس میٹنگ میں موجود رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں سال 2023 اور 2024 کے لیے ماہر کاریگروں کو دستکاری انعامات عطا کریں گی۔ ایک بیان میں ٹیکسٹائل کی وزارت نے بتایا ہے کہ یہ باوقار قومی انعامات غیر معمولی دستکاری مہارت اور بھارت کے گوناگوں اور متنوع دستکاری ورثے کے تحفظ اور فروغ کے تئیں حکومت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ بیان کے مطابق ٹیکسٹائل کے وزیر گریراج سنگھ اور ٹیکسٹائل کے وزیر مملکت پبترا مارگریٹا بھی تقسیم انعامات تقریب میں شرکت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
ان انعامات میں باوقار شلپ گرو انعامات اور قومی انعامات شامل ہیں۔ سال 2023 اور 2024 کے لیے 6 کاریگروں کو شلپ گرو انعام جبکہ 18 کاریگروں کو قومی انعامات دیے جائیں گے۔ سال 2002 میں شروع کیا گیا شلپ گرو انعام دستکاری کے شعبے میں بے مثال مہارت، جدت ترازی اور بھارت کی دستکاری روایات کے تحفظ میں گراں قدر تعاون کے اعتراف میں دیا جانے والا سب سے اعلیٰ انعام ہے۔ وہیں سال 1965 میں شروع کیے گئے قومی انعامات دستکاری کے مختلف اقسام میں بے مثال مہارت کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں۔ ہر سال 8 سے 14 دسمبر کے دوران دستکاری کے قومی ہفتے کے تحت ملک کی دستکار برادری کا جشن منایا جاتا ہے۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے شیروں کی بڑی آبادی والے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شیروں کو بچانے کی کوششوں کو تقویت پہنچانے کے لیے انٹرنیشنل بگ کیٹ الائنس IBCA میں شامل ہو جائیں۔ IBCA کے تحت شیروں کے تحفظ کی مشترکہ پہل سے متعلق کل نئی دلی میں اعلیٰ سطحی بات چیت کی صدارت کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ بھارت سال 2026 میں نئی دلی میں عالمی بگ کیٹس چوٹی کانفرنس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ جناب یادو نے شیروں کی نسل کی مختلف اقسام والے ممالک کو اشتراک، تحفظ سے متعلق حکمت عملیوں کے تبادلے اور بہترین طریقہ کار مشترک کرنے کے لیے مدعو کیا۔ جناب یادو نے شیر، ببر شیر، سنو لیپرڈ، چیتا، تیندوا، پیوما اور جیگوار جیسی شیروں کی نسل کی ماحولیاتی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں انہیں اہم قرار دیا۔ وزارت خارجہ آج نئی دلی میں 5ویں اٹل بہاری واجپئی یادگاری لیکچر کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سنگاپور کے وزیر اعظم کے سینئر مشیر ٹوئی چی ہین بدلتی دنیا میں دیرپا شراکت داریوں کے موضوع پر لیکچر دیں گے۔ یہ سالانہ یادگاری لیکچر سیریز دور اندیش سابق وزیر اعظم اور رہنما اٹل بہاری واجپئی کی جانب سے ملک کی تعمیر اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے طور پر ان کے تاحیات تعاون کو خراج عقیدت کے طور پر منعقد کی جاتی ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ 2015 اور 2024 کے درمیان بھارت میں ٹی بی کے معاملات میں 21% کی کمی آئی ہے، جو عالمی سطح سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ پارلیمنٹ کے جاری موسم سرما کے اجلاس کے موقع پر کل راجستھان کے اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات کے دوران جناب نڈا نے کہا کہ ٹی بی سے متعلق عالمی صحت تنظیم کی رپورٹ 2025 کے مطابق ملک میں اب ٹی بی کے کامیاب علاج کی شرح 90% ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شہری آبادی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ فضائی خدمات کے حالیہ بحران کے لیے انڈیگو پوری طرح ذمہ دار ہے اور وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہی۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں جناب نائیڈو نے کہا کہ پروازوں میں رکاوٹ پیدا ہونے اور ان کے منسوخ ہونے کی وجہ انڈیگو کی جانب سے اس کے عملے اور پائلٹ کے سلسلے میں بد انتظامی تھی، نہ کہ فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشنز FDTL رہنما خطوط۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ حکومت کسی دباؤ میں نہیں ہے اور اس نے ہمیشہ ہر ایئر لائنز کے ساتھ مساوی سلوک کیا ہے۔ جناب نائیڈو نے مسافروں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور حکومت بہتر اور محفوظ کام کاج کے لیے قریبی نظر رکھے گی۔
और सेफ्टी की जब बात आती है तो सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है, और कभी कभी हो सकता है सेफ्टी के सेंस में हमें कुछ निर्णय लेना पड़े तो उसका भी रेस्पेक्ट यात्रियों को करना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी इज ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी। ये एक जो इंसिडेंट हुआ हमारे एविएशन को या फिर हमारे एविएशन की जो शक्ति है या फिर हमारे पैसेंजर की जो क्षमता है उसको कनेक्ट ना करें, वो एकदम बहुत मजबूत है।
इस दौरान शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने कहा है कि फिजाई खिदमात तकरीबन मामूल के मुताबिक हैं, और उन्होंने कहा कि कल इंडिगो ने 1800 परवाजें चलाईं जो कि उसके मामूल के प्रोग्राम के करीब है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आकाशा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट समेत दीगर एयरलाइनों ने भी अपनी पूरी सलाहियत के साथ खिदमात फराहम की। इंडिगो की परवाजें मनसूख होने के दरमियान रिफंड और सामान के मामले पर बात करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि एयरलाइन ने तकरीबन सभी का किराया वापस कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीबन 90% सामान पहले ही भेजा जा चुका है और एयरलाइन बकिया सामान को मुसाफिरों को दिए गए पते पर भेज रही है। केरला में मुकामी इदारों के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
केरला के साथ जनूबी अजला में मकामी इदारों के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल आज सुबह शुरू हुआ। तीनों बड़े सियासी महाज जिनमें बीजेपी की कयादत वाली एनडीए, कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ और सीपीएम की कयादत वाली एलडीएफ शामिल हैं, सभी अजला में फाल तौर पर इंतखाबी मैदान में हैं। मुतादिद छोटे इत्तेहाद और आजाद उम्मीदवार भी कुछ अजला में इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। पहले मरहले में 3 कॉरपोरेशनों, 39 म्यूनिसिपैलिटी, 7 जिला पंचायतों, 75 ब्लॉक पंचायतों और 471 ग्राम पंचायतों में पोलिंग हो रही है। इस दौरान रियासत के साथ शिमाली अजला में इंतखाबी मुहिम जारी है, जहां मंगल के रोज पोलिंग होगी। आकाशवाणी न्यूज तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
गोवा नाइट क्लब आतिशजदगी सानहे के मामले में अदालती जांच के दौरान मुकामी इंतजामिया की जानिब से की गई बड़ी कोताहियों का इंकशाफ हुआ है। इस दौरान पुलिस ने कलीदी मुलजिम को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है जो बैरून मुल्क फरार हो गया है। जांच के दौरान पाया गया कि मुकामी सरपंच ने क्लब के लिए तिजारती लाइसेंस समेत कई इजाजतनामे जारी किए। इसके अलावा मुकामी इंतजामिया उस अहाते को सील करने में नाकाम रही जो गोवा पंचायत राज कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए मार्च 2024 से गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। जापान के शुमाल मशरकी हिस्से में कल रात 7.5 शिद्दत का एक ताकतवर जलजला आया। जापान के मौसमियात की एजेंसी ने कहा कि यह जलजला आमोरी खित्ते के साहिल से तकरीबन 80 किलोमीटर नजदीक आया। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जलजले की वजह से 70 सेंटीमीटर तक सुनामी की लहरें उठी। मर्दों के क्रिकेट में मेजबान भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 टी20 मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहला मैच ओडिशा के कटक के बाराबाटी स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर लोकसभा में इस पर खसूसी बहस से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी के तौर पर पेश किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वंदे मातरम जद्दोजहद आजादी और आजाद भारत का विजन भी बना। महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास का वंदे मातरम से आगाज होने से मुतालिक खबर भी अखबारों में नुमाया है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ सफे अव्वल पर शाई किया है कि मुल्क में 5-6 बड़ी एयरलाइंस के लिए जगह, हुकूमत चाहती है कि नई कंपनियां आएं।
और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में हर चैलेंज से निमटने की सलाहियत मौजूद है और वंदे मातरम का जज्बा उस ताकत की अलामत है। लोकसभा में आज इंतखाबात से मुतालिक इस्लाहात पर, जबकि राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू साल 2023-24 के लिए सरकर्दा दस्तकारों को एजाज बख्शने के लिए आज नई दिल्ली में दस्तकारी अवार्ड्स अता करेंगी। भारत ने शेरों के तहफ्फुज़ के लिए मुतालिका ममालिक के साथ ठोस कोशिशें करने की खातिर शेरों से मुतालिक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद में शामिल होने पर जोर दिया है। जापान के शुमाल मशरकी साहिल पर 7.5 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम कटक में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।